एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि एक उलझे हुए सवाल पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार।
सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों है भाई कि दुनिया में कुछ देश तो बहुत अमीर है और कुछ कुछ बेहद गरीब। ये जो फासला है, क्या ये हमेशा से था या बाद में बना?
हाँ, ये सवाल तो हमेशा मन में आता है। और देखिए, इस पहेली को समझने में आज हमारी मदद करेगी रॉबर्ट सी एलन की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार किताब, ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्ट्री, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन पर चर्चा करेंगे।
बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ कोई इतिहास की बात नहीं है। आज भी हम दुनिया में जो तनाव देखते हैं, चाहे वो व्यापार हो या राजनीति, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी आर्थिक बंटवारे में मिलती हैं, है ना? तो अगर हम ये समझ जाएं कि आखिर ये खाई बनी कैसे, तो शायद आज की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे।
बिल्कुल सही कहा।
ये कहानी सिर्फ बीते जमाने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि आज हम जहां खड़े हैं वहां पहुंचे कैसे, और क्या इतिहास हमें भविष्य के लिए भी कुछ सिखा सकता है।
हाँ, उम्मीद तो यही है।
तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल।
तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रॉबर्ट सी एलन है कौन। देखिए, वे आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में दुनिया के बहुत ही जाने माने विद्वानों में गिने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं
हाँ,
और आजकल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी से जुड़े हैं।
और उनकी सबसे खास बात मुझे लगता है उनका काम करने का तरीका है। वो सिर्फ मतलब पुरानी कहानियों या अंदाजों पर नहीं चलते,
बिल्कुल नहीं।
वो असली आंकड़ों में उतरते हैं। सदियों पुरानी मजदूरी क्या थी, चीजों की कीमतें कैसी थीं, पैदावार कितनी होती थी। और उनका नजरिया भी जैसे सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहता,
सही।
वो पूरी दुनिया को एक साथ देखते हैं। चीन, भारत, अफ्रीका, अमेरिका।
हाँ, और वो एक कोशिश करते हैं कि जो आर्थिक सिद्धांत हैं और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच एक पुल बनाया जा सके। उनकी रिसर्च इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढती है कि भाई, औद्योगिक क्रांति जिसने पूरी दुनिया बदल दी, वो ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई? उस समय तो भारत और चीन भी मतलब काफी उन्नत थे अपनी तरह से। तो एलन का काम हमें ये समझने में मदद करता है, और वो भी काफी आसान भाषा में।
अच्छा, तो ये किताब आखिर है किस बारे में? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पिछले करीब 500-600 सालों के दुनिया के आर्थिक इतिहास का एक सार है, एक निचोड़। लेकिन इसका मकसद सिर्फ तारीखें बताना नहीं है, बल्कि उस बड़े सवाल का जवाब खोजना है कि अमीर और गरीब देशों के बीच ये जो इतना बड़ा फासला है, ये क्यों बना और कैसे बना।
और देखिए, एलन की जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया हमेशा से ऐसी बटी हुई नहीं थी।
वो जिसे ग्रेट डाइवर्जेंस कहते हैं।
हाँ, महान अलगाव।
हाँ, महान अलगाव मतलब अमीर और गरीब देशों के बीच ये जो खाई बढ़ती गई, ये असल में पिछले कुछ 100 सालों की ही कहानी है। खासकर 1500 ईस्वी के बाद यह फासला दिखना शुरू हुआ, और औद्योगिक क्रांति के बाद तो अरे बहुत तेजी से बढ़ा।
और उनकी दूसरी अहम बात जो शायद सबसे क्रांतिकारी लगती है, वो ये है कि औद्योगिक क्रांति किसी यूरोपीय संस्कृति की महानता या उनके कोई बेहतर तौर तरीकों की वजह से नहीं हुई,
नहीं,
बल्कि ये ब्रिटेन की उस वक्त की एक अनोखी आर्थिक स्थिति का नतीजा थी। वहां एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। मजदूरी यानी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऊर्जा यानी कोयला वो बहुत सस्ता था।
जरा सोचिए, ज्यादा मजदूरी को तो हम अक्सर एक समस्या की तरह देखते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन एलन कहते हैं कि यही ब्रिटेन की ताकत बन गई, क्योंकि जब मजदूर महंगे थे तो कंपनियों के पास एक मजबूत कारण था, एक इंसेंटिव था कि वो ऐसी मशीनें बनाएं जो इन महंगे मजदूरों का काम कर सके।
और सस्ते कोयले से चलें।
एग्जैक्टली। और यहीं से वो नई टेक्नोलॉजी का पहिया घूमना शुरू हुआ, जिसने पहले ब्रिटेन और फिर बाकी पश्चिमी देशों को बहुत आगे बढ़ा दिया।
अच्छा, तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, है ना? किताब के पहले हिस्से में एलन ये दिखाते हैं कि भाई 1500 के आसपास दुनिया के जो बड़े शहर थे, लंदन हो, पेरिस हो, या फिर दिल्ली और बीजिंग हो, वहां आम लोगों के रहन सहन के स्तर में, मतलब उनकी खरीदने की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने वास्तविक मजदूरी यानी रियल वेजेस को देखा कि एक मजदूर अपनी दिन की कमाई से कितना जरूरी सामान खरीद सकता था, अनाज, कपड़ा, ईंधन वगैरह।
हाँ, और इसे उन्होंने गुजारे के अनुपात या सब्सिस्टेंस रेशियो से मापा। मतलब अगर अनुपात 1 है तो इसका मतलब हुआ कि बस गुजारा हो रहा है, पेट भर रहा है।
अच्छा।
1500 के आसपास, ज्यादातर जगहों पे करीब करीब यही हाल था। लेकिन फिर कुछ बदला। 16वीं-17वीं सदी आते आते लंदन और एम्स्टरडैम यानी नीदरलैंड्स में यह अनुपात बढ़ने लगा।
क्यों? ऐसा क्या हुआ?
वजह, वो समुद्री खोजें हुई, वास्को डी गामा, कोलंबस, और फिर व्यापार बढ़ा। तो इन अटलांटिक तट के शहरों की कह सकते हैं चांदी हो गई। व्यापार बढ़ा, शहर बढ़े हुए, खेती में भी सुधार हुआ, और इसका असर मजदूरी पर पड़ा, वो भी बढ़ने लगी।
तो ये कब तक चला? मतलब कितना फर्क आ गया था?
18वीं सदी तक तो हाल ये था कि लंदन का एक औसत मजदूर अपनी कमाई से गुजारे के स्तर से 4 से 5 गुना ज्यादा सामान खरीद सकता था।
अरे बाप रे, 4-5 गुना?
हाँ, जबकि चीन, भारत या इटली जैसे देशों में मजदूर अब भी मुश्किल से बस गुजारा ही कर पा रहे थे। तो यहीं से वो महान अलगाव, वो ग्रेट डाइवर्जेंस बिल्कुल साफ दिखने लगा। पश्चिम, खासकर उत्तर पश्चिमी यूरोप, आर्थिक तौर पर बाकी दुनिया से आगे निकलने लगा।
तो यहीं पर किताब का सबसे अहम हिस्सा आता है, औद्योगिक क्रांति। एलन का तर्क है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि ये ब्रिटेन में इसलिए हुई क्योंकि वहां दो चीजें एक साथ मौजूद थीं जो दुनिया में उस वक्त कहीं और नहीं थीं।
क्या थी वो दो चीजें?
बहुत ज्यादा मजदूरी और बहुत सस्ता कोयला। बाकी यूरोप में देखें तो मजदूरी थोड़ी कम थी और कोयला महंगा था, और एशिया और अफ्रीका में तो मजदूरी बहुत ही कम थी।
अच्छा, तो इस कॉम्बिनेशन का असर क्या हुआ?
अब सोचिए, जो नई मशीनें आई, जैसे स्पिनिंग जेनी थी, सूत काटने की, या स्टीम इंजन, ये शुरू में बहुत महंगी थी और बहुत एफिशिएंट भी नहीं थी।
हाँ, शुरुआती टेक्नोलॉजी अक्सर ऐसी ही होती है।
बिल्कुल, तो उन्हें बनाने और चलाने में काफी पैसा लगता था। अब ब्रिटेन में, जहां मजदूरों को ज्यादा पगार देनी पड़ती थी, इन महंगी मशीनों में पैसा लगाना फिर भी फायदे का सौदा था। क्यों? क्योंकि वो महंगे मजदूरों की जगह ले सकती थीं।
अच्छा, समझ गया, मतलब लेबर कॉस्ट बचा रही थीं वो।
हाँ, लेकिन फ्रांस या भारत में सोचिए, जहां मजदूर सस्ते में मिल जाते थे, वहां कोई इतनी महंगी मशीन क्यों लगाएगा? वहां तो हाथ से काम करवाना ही ज्यादा सस्ता पड़ता था।
सही बात है। स्टीम इंजन का उदाहरण भी दिलचस्प है।
हाँ, बताइए।
शुरू में ये बहुत कोयला खाता था, मतलब इनएफिशिएंट था, लेकिन ब्रिटेन में कोयला खदानों के पास ये फिर भी चल गया, क्योंकि वहां कोयला लगभग मुफ्त जैसा ही था, पानी निकालने के काम आता था।
ओके।
लेकिन कहीं और, जहां कोयला महंगा था, इसे लगाना तो सीधे सीधे घाटे का सौदा होता। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन की वो जो अनोखी स्थिति थी, महंगी मजदूरी और सस्ता कोयला, उसी ने नई टेक्नोलॉजी को पनपने का, कामयाब होने का मौका दिया।
ठीक है, तो ब्रिटेन में क्रांति शुरू हो गई, लेकिन फिर बाकी पश्चिमी देश कैसे पीछे नहीं छूटे? जैसे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, उन्होंने क्या किया?
हाँ, ये भी अहम सवाल है। एलन बताते हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की नकल तो की, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उन्होंने ब्रिटिश टेक्नोलॉजी को लिया, पर उसे अपनी जरूरतों और अपनी कीमतों के हिसाब से, मतलब उनकी अपनी मजदूरी और ऊर्जा की लागत के हिसाब से, सुधारा और बदला।
अच्छा, तो उन्होंने अडैप्ट किया।
हाँ, अडैप्ट किया, और उन्होंने एक मानक विकास मॉडल अपनाया। ये एक तरह का सरकारी नुस्खा था अमीर बनने का। इसमें 4 मुख्य चीजें थीं, एक स्टैंडर्ड पैकेज कह लीजिए।
क्या थीं वो 4 चीजें?
पहला, एक देश एक बाजार, मतलब देश के अंदर व्यापार पर कोई टैक्स नहीं, और सामान आसानी से आ जा सके, इसके लिए रेलवे और नहरें बनाना।
दूसरा,
अपने उद्योगों को बचाना, बाहर से आने वाले सस्ते माल पर टैक्स लगाना, जिसे टैरिफ कहते हैं, ताकि घर के नए उद्योग खड़े हो सकें, कॉम्पीट कर सकें।
तीसरा,
बैंक बनाना, ऐसे राष्ट्रीय बैंक जो उद्योगों को आसानी से कर्ज दे सकें, पूंजी उपलब्ध करा सकें।
और चौथा,
सबको पढ़ाना, मतलब मास एजुकेशन, आम लोगों को शिक्षा देना, ताकि फैक्ट्रियों के लिए कुशल कारीगर और इंजीनियर मिले।
तो ये मॉडल कामयाब रहा इन देशों के लिए?
हाँ, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इन सब के लिए ये मॉडल काफी सफल रहा, और वे भी औद्योगिक देश बन गए।
लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों का क्या हुआ? खासकर वो बड़े और पुराने साम्राज्य, जैसे भारत था, चीन, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, यहाँ क्या हुआ?
यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई। ब्रिटेन और यूरोप की फैक्ट्रियों से जो सस्ता मशीनी माल आने लगा, उसने यहाँ के सदियों पुराने हाथ के काम धंधों को, उद्योगों को लगभग तबाह कर दिया।
जैसे भारत का कपड़ा उद्योग?
हाँ, भारत का विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है। इसे एलन वी औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, मतलब उद्योगों का खत्म होना।
और इसमें उपनिवेशवाद का भी तो हाथ रहा होगा?
बिल्कुल, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म ने इस बर्बादी को और गहरा कर दिया। यूरोपीय ताकतों ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से ढाल दिया कि वो सिर्फ कच्चा माल पैदा करें या निकालें, जैसे कपास, नील, मसाले, खनिज वगैरह,
ताकि उनकी अपनी फैक्ट्रियों को सप्लाई मिलती रहे।
हाँ, नतीजा ये हुआ कि इन जगहों पर मजदूरी गिरी रही, गरीबी बढ़ी और नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने का कोई कारण ही नहीं बचा। ये देश एक तरह के गरीबी के जाल यानी पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए।
अमेरिका महाद्वीप की कहानी भी थोड़ी अलग है ना?
हाँ बिल्कुल। उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, वहाँ जमीन बहुत थी और यूरोप से आए मजदूर कम थे, तो शुरू से ही वहाँ मजदूरी ज्यादा रही।
अच्छा।
और आजादी के बाद उन्होंने भी वही मानक मॉडल अपनाया, टैरिफ, बैंक, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, और तेजी से अमीर बन गए।
लेकिन लैटिन अमेरिका में, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ?
लैटिन अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल ने बड़ी बड़ी जमींदारियां, जिन्हें हसियंदा कहते थे, और खदानें बनाई। वहां बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे उनसे बहुत सस्ते में या कई बार तो जबरदस्ती काम लिया जाता था। इससे समाज में भारी असमानता पैदा हुई। जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई और आम मजदूरी बहुत कम रही। आजादी के बाद भी यह ढांचा ज्यादा बदला नहीं, और क्योंकि मजदूरी कम थी तो फिर वही बात, मशीनों की जरूरत महसूस नहीं हुई और वे औद्योगिक दौड़ में काफी पिछड़ गए।
और अफ्रीका, अफ्रीका की कहानी क्या कहती है?
अफ्रीका की कहानी शायद सबसे दुखद है। देखिए, उपनिवेशवाद से पहले वहां भी अपनी अर्थव्यवस्थाएं थीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, लेकिन मुश्किल भूगोल, बीमारियां, इन्होंने तरक्की को धीमा रखा हुआ था।
और गुलामों का व्यापार?
हाँ, गुलामों के व्यापार ने तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो असली चोट लगी हो 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय कब्जे से लगी।
उन्होंने क्या किया?
यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, कोको, रबर, हीरे, सोना, तांबा निकालने के लिए। रेलवे लाइनें भी सिर्फ खदानों से बंदरगाह तक बिछाईं ताकि माल बाहर भेजा जा सके।
मतलब देश के अंदरूनी विकास पर ध्यान नहीं दिया?
बिल्कुल नहीं। नतीजा क्या हुआ? अफ्रीका सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह गया, और दुनिया भर की होड़ ने इन चीजों की कीमतें भी कम रखी और वहां काम करने वालों की मजदूरी भी। अफ्रीका में मजदूरी दुनिया में सबसे कम थी, तो जाहिर है वहां आधुनिक मशीनों में पैसा लगाना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं था। वो भी गरीबी के जाल में बुरी तरह फंस गए।
तो फिर सवाल ये उठता है कि 20वीं सदी में जब ये देश आजाद हुए तो उन्होंने तरक्की क्यों नहीं की? कोशिश तो की होगी, उन्होंने भी तो शायद वो मानक मॉडल, टैरिफ, बैंक, शिक्षा अपनाने की कोशिश की होगी।
हाँ, कोशिश तो की, लेकिन एलन कहते हैं कि तब तक अमीर और गरीब देशों के बीच फासला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सिर्फ ये मानक नुस्खे काफी नहीं थे। उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि अमीर देशों की जो महंगी टेक्नोलॉजी थी वो उनके लिए फायदेमंद ही नहीं थी, बेकार थी। उन्हें कुछ अलग, कुछ ज्यादा बड़ा करने की जरूरत थी।
तो क्या था वो अलग?
और यहीं पर एलन बिग पुश यानी बड़े धक्के वाले मॉडल की बात करते हैं। ये 20वीं सदी में कुछ देशों ने सफलतापूर्वक अपनाया, जैसे जापान ने, फिर सोवियत यूनियन ने अपने तरीके से, ताइवान, दक्षिण कोरिया और हाल के सालों में चीन ने।
अच्छा, तो ये बिग पुश है क्या असल में?
इसका मूल आइडिया ये है कि सिर्फ बाजार के भरोसे बैठने से गरीबी का जाल अपने आप नहीं टूटेगा। सरकार को खुद आगे बढ़कर एक साथ बड़े पैमाने पर हर जरूरी इंडस्ट्री में जबरदस्त निवेश करना होगा। स्टील प्लांट, बिजली घर, मशीन बनाने वाले कारखाने, सड़कें, बंदरगाह, सब कुछ, भले ही शुरू में ये सब घाटे में चले।
मतलब एक पूरा इकोसिस्टम एक साथ बनाना।
हाँ बिल्कुल, मकसद होता है एक पूरा का पूरा आधुनिक औद्योगिक सिस्टम एक साथ खड़ा कर देना, जो फिर अपने आप विकास की गाड़ी को खींचने लगे। ये दिखाता है कि विकास के लिए कई बार सिर्फ बाजार काफी नहीं होता, सरकार को एक बड़ी और बहुत सोची समझी भूमिका निभानी पड़ती है।
ये तो काफी अलग नजरिया है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से क्या बड़े सबक या संदेश मिलते हैं? आपके लिए सबसे जरूरी क्या लगा?
मेरे लिए पहला और शायद सबसे बड़ा सबक यह है, दुनिया में ये जो अमीर गरीब का भारी फासला है, ये कोई कुदरती चीज नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये इतिहास में बना है, पिछले कुछ 100 सालों में।
हाँ,
और इसका मतलब यह है कि इसे बदला भी जा सकता है। ये चीज हमें नाउमीद होने से बचाती है।
सही कहा। मेरे लिए दूसरा अहम सबक ये है, नई टेक्नोलॉजी सिर्फ किसी के दिमाग की उपज नहीं होती, वो अक्सर आर्थिक जरूरतों से पैदा होती है। जैसे ब्रिटेन में महंगी मजदूरी ने मशीनों को जन्म दिया। ये आज भी सच है। हम भारत में भी देखते हैं कि जहां मजदूर सस्ते हैं वहां ऑटोमेशन या नई मशीनें लाने में हिचक होती है। मतलब टेक्नोलॉजी का विकास भी अर्थशास्त्र से बहुत गहराई से जुड़ा है।
बिल्कुल, और तीसरा सबक इसी से जुड़ा है, एक जगह की कामयाब टेक्नोलॉजी दूसरी जगह भी कामयाब हो ये जरूरी नहीं। अमीर देशों की महंगी मशीनें जो उनके महंगे लेबर को बचाने के लिए बनी हैं, वो गरीब देशों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती जहां मजदूर सस्ते हैं।
हाँ, ये मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों के लिए भी सोचने वाली बात है ना, कि हमें अपनी जरूरतों और अपनी लागत के हिसाब से टेक्नोलॉजी बनानी होगी, ये कम से कम उसे ढालना होगा।
सही। चौथा सबक जो थोड़ा गंभीर है, गरीबी एक दुष्चक्र या एक जाल की तरह है। कम मजदूरी है तो नई तकनीक में कम पैसा लगाया जाता है, उससे तरक्की कम होती है और नतीजा फिर कम मजदूरी। इस चक्कर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
भारत में हम खेती में या छोटे उद्योगों में ये मुश्किल अक्सर देखते हैं, जहां कम उत्पादकता और कम आय एक दूसरे को बढ़ावा देते रहते हैं।
हाँ, और पांचवा सबक, तरक्की में सरकार का रोल, स्टेट का रोल हमेशा बहुत अहम रहा है। चाहे वो 19वीं सदी का मानक मॉडल हो या 20वीं सदी का बिग पुश, बिना सोचे समझी सरकारी नीतियों के, बिना सरकारी हस्तक्षेप के शायद ही कोई देश गरीबी के जाल से निकलकर आगे बढ़ाए।
मतलब ये सोचना कि सब कुछ बाजार पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, शायद इतिहास से सबक न लेना होगा। भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं भी तो एक तरह का बिग पुश ही थी, है ना?
हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं कोट्स की तरह।
हाँ, बताइए कुछ।
जैसे पहली, जो एलन के काम का शायद निचोड़ है, औद्योगिक क्रांति मूल रूप से 18वीं सदी के ब्रिटेन की अनोखी कीमत और मजदूरी संरचना की प्रतिक्रिया थी। मतलब ये कल्चर या दिमाग का खेल नहीं था, ये सीधे सीधे इकोनॉमिक्स थी।
ये बहुत पावरफुल बात है। और
दूसरी बात, अमीर देश जो तकनीकें बनाते हैं वे उनके महंगे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। वही तकनीकें कम मजदूरी वाले देशों में लागत प्रभावी नहीं होती। ये गरीबी के जाल की चाबी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना काफी क्यों नहीं है।
बिल्कुल। तीसरी बात भी बहुत अहम है। 19वीं सदी का वैश्वीकरण कुछ के लिए विकास की कहानी थी। इसने पश्चिम में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन एशिया के महान साम्राज्यों का वी औद्योगीकरण किया और अफ्रीका को प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में फंसा दिया। ये ग्लोबलाइजेशन के दोहरे पहलू को उजागर करता है ना?
हाँ, कि उसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। चौथी बात, विकास के लिए केवल कीमतें सही होना काफी नहीं, संस्थान भी सही होने चाहिए। मतलब सिर्फ बाजार ठीक कर देने से काम नहीं चलेगा। अच्छे कानून, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, भरोसेमंद बैंक, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं।
और पांचवी, जो थोड़ी उम्मीद देती है, अतीत वर्तमान को सूचित करता है लेकिन उसे निर्धारित नहीं करता। मतलब इतिहास हमें बताता है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, पर वो ये तय नहीं करता कि हम आगे कहाँ जाएंगे। सही नीतियों से भविष्य को बदला जा सकता है।
तो इन सब बातों का हमारी जिंदगी से, आम लोगों की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, जो लोग नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए तो ये किताब एक बड़ी सीख देती है कि विकास के लिए कोई एक साइज का जूता सबके पैर में फिट नहीं होता। वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। नीतियां जमीनी हकीकत देखकर बनानी होंगी। वहां मजदूरी कितनी है, ऊर्जा की कीमत क्या है, लोगों के पास हुनर क्या है। दूसरों की नकल अक्सर फेल हो जाती है।
हाँ, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समझने में मदद मिलती है कि क्यों कोई प्रोडक्शन प्रोसेस एक देश में सफल होता है और दूसरे में नहीं। टेक्नोलॉजी को लोकल हालात, लोकल कॉस्ट के हिसाब से ढालना कितना जरूरी है।
और हम जैसे आम नागरिकों के लिए, मेरे ख्याल से ये किताब दुनिया में जो इतनी असमानता है उसे समझने का एक ज्यादा तार्किक, एक ज्यादा ऑब्जेक्टिव नजरिया देती है। यह हमें सिखाती है कि अगर कोई देश गरीब है तो उसके पीछे शायद उसकी संस्कृति या लोगों की कमी नहीं, बल्कि गहरे आर्थिक और ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। इससे हम दुनिया की घटनाओं पर या विदेशी सहायता, व्यापार समझौतों जैसी चीजों पर ज्यादा जानकारी के साथ अपनी राय बना सकते हैं।
सही कहा। और ये सरकार की भूमिका पर भी दोबारा सोचने को मजबूर करती है। इतिहास तो यही दिखाता है कि बड़े आर्थिक बदलाव लाने के लिए अक्सर सरकार को आगे बढ़कर जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं, चाहे वो शिक्षा में निवेश हो या बुनियादी ढांचा बनाना हो या फिर नई इंडस्ट्रीज को शुरुआती सहारा देना हो। शायद वो सही संतुलन ढूंढना ही असली चुनौती है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि आर्थिक तरक्की कोई जादू या किस्मत की बात नहीं है। ये खास तरह के आर्थिक हालात सही संस्थाओं और सोच समझ कर लिए गए नीतिगत फैसलों का नतीजा होती है। और ये जो गरीबी का जाल है, ये एक वास्तविक आर्थिक बाधा है जिसे तोड़ने के लिए बहुत सचेत और बड़े प्रयास की जरूरत होती है। ये अपने आप नहीं टूटता।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात, जैसा हमने पहले भी कहा, वो ये थी कि कैसे ब्रिटेन की एक समस्या यानी कि महंगी मजदूरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और उसने इनोवेशन को, नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ये दिखाता है कि कभी कभी चुनौतियां ही नए रास्ते खोलती हैं। इतिहास हमें बताता है कि मुश्किलें कहाँ हैं, लेकिन शायद वो हमें उन मुश्किलों से निकलने के औजार भी देता है अगर हम ध्यान से देखें तो।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।